भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है और भरती महाराज जो है, इनके परस्पर के प्रेम की बात और इनके मिलन की बात कहने के लिए मुझको प्रेरणा हुई। तो मैं जो है समझो कि शास्त्रों के जो सार की बात है वो कहने का विचार किया। तुलसीकृत रामायण, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण और पद्म पुराण और किसी आनंद की बात है, क्योंकि देखने का बड़ा भारी प्रेम भगवान राम के मां था। किंतु वह कुबड़ी जो है उसने एक प्रकार से उसको पाठी पढ़ाई, जब राम राजा हो जाएगा तो फिर कोट जाके नीचे समझो कि तुमको रहना पड़ेगा दासी होकर के, और उसे तो उसके शासन में समाप्त हो जाएगी। ये मेरी तो यह राय है कि दो वरदान राजा के पास में ढोर रूप से तेरे बाकी हैं, तो एक में तो तुम ये मान लो कि भरत को राजगद्दी 14 वर्ष के लिए और राम को 14 वर्ष के लिए बनवास। अब 14 वर्ष वन में राम चला जाएगा तो भरत का सब प्रकार से अधिकार हो ही जाएगा, तो इसमें तेरा मंगल है। इस प्रकार से उसको शिकरा दिया और वो इस प्रकार से उसकी बात को मान करके के और खोप होने जा करके समझो सो गई। राजा दशरथ आए तो दशरथ ने समझा नहीं कि किस कारण से या नाराज है। पूछा तो बोला कि पहले आप इस बात का इकरार कर लो कि तेरी बात को मैं मानूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा। आपने मुझे 2 वरदान देने की कही थी किंतु फिर दिए नहीं। तो दशरथ जी ने कहा कि तुम 2 के 4 ले लो, नहीं दिए तो क्या, अब मैं देने के वास्ते तैयार हूं। तो उस वक्त के वहां एक ही राजा दशरथ को पटा करके के और समझो कि अपने अनुकूल बना करके के फिर ये 2 वरदान मांगे कि मेरा पहला वरदान तो यह है कि 14 वर्ष के लिए भरत को राजगद्दी और दूसरा ये कि राम को बनवा। ये सुनकर के दशरथ बड़े दुखी तो हुए और दशरथ ने कहा कि कहते राम जो है सो राज का भूखा नहीं है, तुम अवश्य जो है सो 14 वर्ष के लिए भरत को राजगद्दी दे दे, किंतु मेरा समझो कि हृदय का टुकड़ा जो राम है उसको तू वन में मत। यदि तू राम को वन में भेज दे, राम को वन में भेज देगी तो राम के वियोग के बीच के मां मेरे प्राण ही रहेंगे और तुम ऐसा समझो कि विधवा हो जाएगी। तुम अपने फेर विचार ले, अभी एक प्रकार से कोई बात नहीं है, किंतु केकई ने एक प्रकार से ये निश्चय कर लिया कि नहीं, 14 वर्ष के लिए भरत को राजगद्दी और राम को बनवा मैं यही वरदान मांगती हूँ। और मैंने सोच विचार करके देख लिया और दूसरा वरदान मैं नहीं लेती। यदि एक प्रकार से थी आपकी देने की नहीं इच्छा है तो तुम ना कर दो, और वचन देकर यदि ना करोगे तो उसका फल आपको है तो नरक होगा, और नहीं तो तुम जो कि राम को बनने थे। यदि कर प्रातः काल राम बन को नहीं जाएगा तो मैं आत्महत्या करके के तुम जो कि अपने प्राणों का त्याग कर दो, और आपको मिथ्या बोलने का दोष लगेगा। दशरथ जी व्याकुल हो गए और बहुत कुछ समझाया किंतु एक ही के समझ में नहीं आया। तो दशरथ जी बेचारे पड़े रहे एक प्रकार से थी, प्रातः काल उठने के समय नहीं उठे, बंदी लोग भी एक प्रकार से थी समझो कि कभी गाते रहे। उसके बाद में सुमंत आए सुमंत ने देखा कि दशरथ जी व्याकुल पड़े हैं और पास में केकई बैठी है। केकई ने कहा कि महाराज जो है व्याकुल क्यों है। केकई ने कहा कि पहले तुम राम को यहाँ बुला करके लाओ। ये बात के बीच के वहां समझो कि सुमंत से और भगवान राम से ये सूचना दी। भगवान राम उसी पर आपने चले आए, आखिर के देखा पिताजी का हाल बेहाल है, पास में माता बैठी है। तो माता से पूछा कि क्या बात है पिताजी इतने खिन क्यों। तो देखे ही ने जो बात थी इससे बतला दी, ये बात है जो वरदान मेरे द्रोह रूप से तुम्हारे पिता के पास थे, उन दोनों वरदानों के विषय में एक में मैंने 14 वर्ष के लिए भक्त को राजगति और दूसरे वरदान में तेरे लिए 14 वर्ष का बनवा। तुम्हारा जो पिता है वो तुमको वन में जाने के लिए, वन में भेजने के लिए राजी नहीं है, यही कारण है। और तू माता पिता का भक्त है तो तेरे को एक प्रकार से पिता की आज्ञा पाल करके और पिता को पाप से बचाना चाहिए। श्री राम ने कहा कि माता से ये तो छोटी सी बात है, इनके लिए पिताजी नाराज हुए ये बात मुझे समझ में नहीं आती। और वन में जाने में तो सब प्रकार से मेरा हित है, तो ये तो खुशी का विषय है, पिताजी की आज्ञा है और उसमें आपकी सम्मति है। और वन के मां मुनियों से मिलना होगा और मेरे प्रेम प्यारे भाई भक्त को राजगति मिलेगी, इससे बढ़कर के मेरे लिए और सौभाग्य की बात हो क्या सकती है। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात, ऐसे मौके में मैं ना करूंगा तो मूर्खों के मां पहली श्रेणी में समझा जाऊंगा। मैं मेरे मन में जाने का जो प्रचय जो है वो मैं माता को सूचना दे दूं और मैं इस प्रकार से भी मन में जाने के लिए तैयार होकर के आता हूं। और आप इस विषय के भी इसके बाद आपको कोई विचार नहीं करना चाहिए, पिताजी को कोई विचार नहीं करना चाहिए, ये तो कोई चिंता शोक की बात है ही नहीं। इस प्रकार के प्रेम की बात भगवान श्री राम ने तो अपने देवी से कही। और फिर माता के पास में आए और सारी बातें माता को कह दी। माता सुनकर के व्याकुल हो गई। माता ने कहा कि पिताजी जो आज्ञा है वन में जाने के लिए और मेरी आज्ञा है कि वन में नहीं जाने के लिए। तो जिस प्रकार से भी पिता पूजनीय है ऐसे माता भी पूजनीय है, तो मेरी बात तुम्हारे को विशेष रूप से माननी चाहिए क्योंकि मैं पिता से भी बढ़ करके पूजनीय हूँ। वाल्मीकि रामायण के वहां बतलाया है भगवान श्री राम कहते हैं पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने की मुझमें सामर्थ्य नहीं। और देखने के सन्मुख तो और भी बात भगवान राम ने देवी के साथ कही है वाल्मीकि रामायण में। हे जननी तू क्या कह रही, पिता का हुक्म हो तो मैं आग में प्रवेश कर सकता हूँ और विष खा सकता हूँ। और ये तो हमारे बहुत ही आनंद की बात है बनने जाना। भगवान श्री राम ने कहा कि ठीक है, माता जो है उसके वचन पिता से बलवान होते हैं और माता अधिक पूजनीय होती है, ये बात फिर मैं तो तुम्हारी आज्ञा है माता की आज्ञा है और उत्तर उत्तर के बीच के माता पिता दोनों की आज्ञा की भी आज्ञा है और के की भी आज्ञा है। तो कौशल्या ने कहा कि ऐसी बात है तो तुम वन में जाओ और वन के देवी देवता तुम्हारी रक्षा करें। पिता को भी खबर दी गई तो पिता सुनकर के व्याकुल हो गई। भगवान श्री राम ने पिता को समझाया कि तुम घर के वहीं रहो, किंतु वो घर में कब रहने वाली थी। उन्होंने कहा कि आपके वियोग से माँ जो मुझको तकलीफ होती है वो तकलीफ वन में जाने में नहीं, आपने वन के बहुत कलेश बतलाए किंतु आपके वियोग के मुकाबले में कुछ भी असुर। भगवान श्री राम ने देखा ये जो है अवश्य एक प्रकार से हमारे वियोग में प्राणों का त्याग कर देगी, तो भगवान उनको साथ में देगी। पति प्रता भी उन्होंने रामायण के मां कहा है, भगवान ने जब धर्म पर रहने के लिए आज्ञा दी कि माता पिता की सेवा करने के बन के मां मैं जो जाऊंगा तो ये हमारे वियोग में दुखी होंगे, तो इनको आश्वासन देना चाहिए और घर में सब प्रकार का सुख है और बन के बीच के मां तो हवा चलती है और बन के बीच के मां शीत पड़ता है, गर्मी पड़ती है और वर्षा आती है, सब प्रकार का कलेश है और खाने के लिए वहाँ कंदमूल फल मिलते हैं, तो भी कभी तो मिलते कभी नहीं मिलते, वृक्षों के नीचे रहना पड़ता है या पर्णशाला बना करके रहना पड़ता है और वहाँ रात लोग खिलते हैं और स्त्रियों को जोड़ करके ले जाते हैं, इसलिए तुम्हारे को घर पर ही रहना ठीक है। यहाँ अनुसाराम भोग है, समझो कि रहने के लिए महल है और सब प्रकार का आराम है, तो सीता उत्तर देती है भोग रोग सम भूषण भारू यमया पैना चारी से संसार के जो भोग हैं ये तो रोग के समान है और जो आभूषण जो गहने हैं ये भार रूप है और संसार के जो मनुष्य हैं ये जम के दूध के समान आपके बिना। आखिर के माँ सीता ने कहा कि आप ऐसे ऐसे कठोर जो वचन कह रहे हैं कि तू यहाँ रह जा, आपके वियोग के वचनों को सुन करके मैं जो बर्दाश्त कर रही हूँ ऐसे मुझको मालूम होता है कि आप छोड़ करके जाएंगे और मैं जीती
रहूंगी। लिखा है उन ज्योतियों का वतन मिथ्या नहीं होना चाहिए,
और एक कठोर बात भी कही तो प्रेम के नाते संयोग की प्रेम कोप में ऐसी बात कही जावे तो कोई हर्ष की बात या दोष की बात नहीं। वाल्मीकि रामायण में यहाँ तक बतलाया है यदि मेरे पिता या बाप समझते समय आने के ऊपर ये राम जो है तो पिता को छोड़कर के अकेला चला जाएगा, ऐसी जो मेरी पुत्री जो परिप्रता एक प्रकार से ऐसी सुशील और सती स्त्री को छोड़ करके चला जाएगा, ये बात मेरे पिता यदि समझते तो आपके साथ में मेरा विवाह नहीं करते, आपको आर्थपूर्ण समझ करके आपके साथ में विवाह किया, किंतु आज मुझको अकेली को छोड़ करके आप वन में जाने के वास्ते तैयार हो गए, तो ईश्वर भगवान ने स्वीकार कर लिया कि सर तुम भी जल। ऐसे ही समझो कि जब लक्ष्मण को पता लगा कि भगवान राम वन में जा रहे हैं तो दौड़ करके आए, उन्होंने भी साथ जाने के लिए अपने तो कहा, पर भगवान उनको साथ तो देगी। इसी के मां भी बहुत सी बातें हैं, चार भय से ये इसका वर्णन ज्यादा नहीं कहता हूं। वाल्मीकि रामायण में तो बड़ी कठिन बात बड़ी कठोर बात लक्ष्मण ने कही, ये बात जब लक्ष्मण ने सुनी तो लक्ष्मण ने कहा कि पिता का क्या अधिकार है जो आपका जो हक है आपका जो इस प्रकार से राज है वो भरत को दे दे, पिता का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि आप बड़े हैं और बड़ों का ही अधिकार राज के ऊपर, यदि प्रकार की बातें पिताजी कहेंगे तो एक प्रकार से हम ऐसे पिता की बात को मानने के लिए तैयार नहीं, हम जो हथियार बांधते हैं वे शोभा के लिए नहीं बांधते, एक प्रकार से प्रकार की आज्ञा देने वाले पिता की बातों को हम नहीं मानेंगे, और यदि ऐसा करेंगे तो हम पिता को मार डालेंगे, और पिता की सहायता के वास्ते जो कि अर्थ और शत्रुघ्न के जो माने हैं वे आकर सहायता करेंगे सेना लेकर के तो उसको सेना सहित मार डालेंगे, और इस प्रकार से भी माता के बचनों को आधार मान करके भरत और शत्रुघ्न जो है वे भी एक प्रकार से राज के प्रोलुप होकर के ऐसी चेष्टा करेंगे तो भरत और शत्रुघ्न को भी जान से मार डालेंगे। राम ने कहा कि भैया तुम जो कहते हो तुम्हारी चिंता की बात हम जानते हैं, किंतु हमारे तकदीर में हमारे दैव ने ऐसा ही लिखा है, बोले कि दैव देव तो का पुरुष पुकारा करते, आप जैसे पुरुष देव का आसरा नहीं लेते, मैं आज आपको दिखला दूंगा कि संसार के मां दैव बड़ा या पुरुषार्थ बड़ा है, मैं अपने पुरुषार्थ के बल के ऊपर आपको राज लिख दूंगा और आपको राजगति पर बढ़ा दूंगा, मेरे जीते हुए ऐसा कौन संसार के बीच के मां है जो भरत को राजगति दे दे। भगवान राम ने कहा कि भैया तुम जो कहते हो सब ठीक है किंतु मेरी इच्छा वन में जाने की, बोले जब आपकी इच्छा वन में जाने की है तो फिर मेरा कोई उपाय नहीं, फिर मैं भी आपके साथ चलूंगा, आपने ये बात कही थी वो वचन कहे थे कि हम लोगों के तकदीर के बनवास दिखा है, तो हम लोगों के तकदीर में तो मैं भी तो शामिल हो गया ना, हम लोगों में कौन, तो फिर भगवान उनको साथ में लेगा। श्री कृष्ण का जो कथन है वो दूसरी प्रकार श्री कृष्ण के वहां तो ये कहा कि मैं भी आपका सेवक आपके साथ ही जाना चाहता हूँ, भगवान राम ने कहा कि नहीं ये नीति नहीं है धर्म नहीं है, तुमको यहाँ रहकर के पिताजी की सेवा करनी चाहिए, तो क्या देखो भरत और शत्रुघ्न भी यहाँ नहीं है ननिहार में गए हैं और पिताजी हमारे शोक के बीच के मां जो कि व्याकुल हो जाएंगे उनको देना चाहिए, ये हमारा तो धर्म है। लक्ष्मण ने कहा कि धर्म और नीति का उपदेश तो उनको देना चाहिए जो संसार में कीर्ति चाहता हो, मैं तो आपका प्रेम का पाला हुआ हूँ, क्या हंस के बच्चे पर कोई पहाड़ रख दे तो उसको क्या वो संभाल सकता है, मैं आपका प्रेम के द्वारा पाला हूँ इस बार से मुझको आप चरणों से अविच न करिए, उस पर भी आप मुझको छोड़ करके चले जाएंगे तो फिर उसके वहां मेरा क्या बस है, आपको भी दिए कि तुम भी ये सुख पहन लीजिए। ये देख करके सब लोग एक दूसरे दुखी तो इसकी कीमत नहीं पड़ी। सीता ने कहा श्री राम से लज्जा छोड़ कर के मुनियों की स्त्रियां किस प्रकार से बंदर पहनती है ये मुझको ज्ञान नहीं। सोचते हैं भगवान राम लज्जा त्याग करके और बस्तर लेकर के सीता को पढ़ाने लगे। ये देखकर सब रोने लगे और पतिस ने कहा कि वे दुष्टा के कही क्या सीता को भी तुम सीता के लिए भी तने ये वरदान मांगा है कि सीता लिए तो बलकर बस्तर पहन करके मन में राम के साथ में जा मित्रोसा घोर अन्याय तो क्यों कर रही। सीता जो है इन्हीं वस्त्रों से बन के मान जाए वो के क्या कह सकती थी। जब वन में जाने लगे उस समय के बीच के मास एकांत के बीच के मास सुमंत से कहा वाल्मीकि रामायण में बताया कि सुमंत इस राजकुमारी को कम से कम सत्य प्रतिज्ञा करने वाले सत्य का पालन करने वाले श्री राम लौट करके वापस नहीं आवे तो जनक कुमारी सीता को तुम ले आना हमारे प्राणों के आधार के लिए नहीं तो हम नहीं जी सकेंगे। प्रकाश थी उसको कहा ये बात के बीच के मां ये सब पन को चले अन को जाने के बाद में सुमंत लौट करके वापस आ गया। वाल्मीकि रामायण के मां बतलाया है क्या सुमंत जनक कुमारी सीता भी लौट करके वापस नहीं आई। उन्होंने कहा महाराज मैंने बहुत कुछ कहा वो लौट करके नहीं आई। श्री राम और लक्ष्मण और सीता ये लौट करके नहीं आए ये सुनकर के दशरथ जी व्याकुल हो गए। दशरथ जी ने कहा कि सुमन मुझको कौशल्या के भवनों में ले चलो अब निश्चय ही मेरे प्राण जाएंगे इसमें कोई शंका की बात नहीं है। राम के बिना मैं समझोगे नहीं जी सकूंगा। प्रकार से कह करके कहा देखो अवश्य मेरी मृत्यु होगी किंतु मैं तुम लोगों को कह देता हूं कि मेरे मरने के बाद मेरा जो सब जो है मुर्दे का शरीर इसको देख ही और समझो कि भरत छोड़े दे पा और हे विधाता हे विधि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मरने के बाद समझो कि भरत और एक ही मुझको यदि जल देवे या पीड़ देवे तो उनके दिए हुए समझो पिंड और उनका दिया हुआ जल मुझको परलोक में नहीं मिले। ये कहकर के दशरथ जी कौशल्या के भवन में चले और एक प्रकार से थी समझो कि रुचिकृत के मां तो ये बात दिखलाई है कि राम 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 इस प्रकार से पुकार करके उन्होंने प्राणों का त्याग किया और वहां समझो कि हा राम हा लक्ष्मण हा सीते वाल्मीकि के बीच के मां इस प्रकार से हर पार करके उन्होंने प्राणों का हरण किया। प्राणों के त्याग करने के बाद के बीच के मां गुरु वशिष्ठ ने उसी वक्त में समझो कि दूर भेजे हर तो शत्रुगुण को लाने के वास्ते ननिहार के मां उनके ननिहार में और वे गए दूर से और जाकर के उन्होंने कहा कि गुरु जी की आज्ञा है कि आप शीघ्र आओ बहुत जरूरी काम है। ये नहीं बताया कि पिताजी की तो मृत्यु हो गई और राम और लक्ष्मण वन को चले गए। उन्होंने मना कर दिया था कोई भी संदेशा नहीं देना यही कहना बहुत जरूरी काम है तुम जल्दी चले आओ। ये सुन करके वे सोचती है सोचा वो पिता की आज्ञा मानी जाती है पिता के हुक्म के अनुसार ही मंत्री जो हुक्म करता है। तो उन्होंने सोचा कि बशीर जी महाराज गुरु भी हैं और मंत्री भी हैं इस वास्ते पिता के हुक्म के अनुसार ही हम बुलाए गए हैं। अब ये तुरंत ऐसे आए रस्ते के वहां देखते हैं कि अयोध्या के लोगों को देखते हैं कि बड़े एक प्रकार से उदास और बड़े ऐसे हो गए कि जैसे समझो कि वन के बीच के मां जो अपने धान को और समझो कि गुलमों को जैसे दावा मार जाता है शीत मार जाता है और वो जैसे उमला जाते हैं ऐसी दशा अयोध्या के मनुष्यों की देख किंतु समझे नहीं समझ के देखी कपिल जी केकई के भवन में रहा करते हैं तो केकई के भवन में आए। वाल्मीकि में बतला है कि वहां केकई पलंग के ऊपर सूची हुई थी और आया सुनकर के एकदम उड़ी और असंचित से हंसी हुई जब जो कि भरत से मिली और चरणों में नमस्कार करता है, उसको उठाकर के अपने हृदय के लगा दिया। साथ में शत्रुघ्न जी थे ही, भरत ने कहा कि पिताजी है सुख, उसके कोई शोक तो था नहीं, एक ऊपर का छूटा शोक दिखला करके, और उसने कहा कि बेटा तेरे पिता जो है स्वर्ग को पधार गए, ये सुन करके भक्ति दुखी हुए और विलाप करने लगे, और विलाप में उन्होंने कहा, वाल्मीकि रामायण में बताया कि हाय रे पिताजी, परलोक सिधारने के समय के